ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. గుడ్. ఆప్ థకే నహీ దిఖాయి దే రహా హై కి పహుంచ్ గయే సభీ. హాయ్. कई लोग ना सेंटर पर क्लास करने आना बंद कर दिया, दो दिन तीन दिन. दीदी ने फोन करके पूछा क्या हुआ. बस जी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, घर में ऐसी परिस्थिति आ गई, मूड बहुत खराब था, मन ठीक नहीं था. अब आप सोचिए कि वो घर में बैठकर मन ठीक कर रहे हैं भाई. जब पहले से परिस्थिति आई हुई है, मार खाए हुए हैं, माया से हार खाए हुए हैं, मूड अपसेट है, तो वो वहां सेट कैसे होगा जिस स्थान पर अपसेट है. तो उसके लिए तो दिन में दो बार आना चाहिए. वैसे एक बार आए और जब प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर के पास दो दो बार भी आना पड़ता है. तो वो तो जरूर जाना होता है. और वो सोचते हैं कि सेंटर पर ना जाके घर में रह के हम ठीक कर लेंगे उसको. अगर इतने ही अकलमंद होते तो परिस्थिति आती ही क्यों. हमारा कोई क्लास नहीं है, ना ही एक क्लास का टॉपिक है चार्ट चेकिंग. कुछ छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि आपका आज ये फर्स्ट डे ही है. बस आज कल परसों पूरा हो गया. सिर्फ तीन दिन की भट्टी है. कल तो उद्घाटन ही था, फिर भी विशेष क्लास मिली मनोरमा बहन जी की. और आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि सभी करते हैं, कभी कभी जब बाबा याद कराता है तब तब कर भी लेते हैं. अच्छा, ज्ञान है तो वैसे भी अपने कार्य व्यवहार कर्म दिखते रहते हैं. किसी से भी छुपा लो, अपने आप से नहीं छुपाया जा सकता. दुनिया वाले भी ये बात फील करते हैं. देखो, अपने तरीके की चार्ट चेकिंग वो भी करते हैं. एक बहन आ रही थी कोर्स करने के लिए. एक रियल किस्सा सुनाती हूँ. तो 6 दिन 7 दिन का कोर्स हो गया, तो फिर वो कहने लगी कि एक दिन ये अष्ट शक्तियों वाला लेसन खोल के तो ये पावर टू पैकअप फिर से करवाइए. तो उनको फिर से समझा दिया कि बहुत सारे थॉट्स हमारे बिखरे रहते हैं, तो जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर होते हैं, आत्मा समझते हैं, तो वो समेटे जाते हैं. ऐसी ऐसी कुछ बातें. ये भाई आगे आ जाए, आगे भी जगह है खाली. सोफा पर दो दो बैठे हैं, बहुत चौड़े हो के आराम से. देखो, जो नौजवान समझते हैं अपने आप को, वो नीचे भी बैठ सकते हैं. बात समझने की है सिर्फ. जो समझते हैं कि हम तो अभी जवान हैं, तो वो नीचे भी बैठ सकते हैं आके. तो उसने कहा कि उसने एक किस्सा सुनाया. वो जो आती थी तो वो बहुत अच्छी बॉटनी की प्रोफेसर थी. और उसने कहा कि हमारा जो मेरी जो सास है, मदर इन लॉ, तो वो भी केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल रिटायर हुई. तो उसने अपना एक कहानी सुनानी शुरू की. उसने बताया कि जब मेरी शादी हुई थी, तो क्योंकि मैं जो बैकग्राउंड है मेरा वो फौजी घर से है, तो मेरे फादर बड़े ऑफिसर थे और ब्रिगेडियर. ब्रिगेडियर तो और बड़ी पोस्ट है. तो एज ब्रिगेडियर वो रिटायर हुए. तो उसने बताया कि मेरे फादर ने जब मेरी शादी होने वाली थी, तो यहाँ चंडीगढ़ में वहां पर उन्होंने मिनट मिनट प्रोग्राम भेजा और होने वाली है बारात जानी है पटियाला में. 1.25 घंटे का रास्ता है मुश्किल से, तो वहां जानी है. वहां उनकी बड़ी आलीशान कोठी और रास्ते में कई रिजोर्ट्स और कई कुछ है. जो मेन रोड है उस पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है पटियाला की, और कई अच्छी अच्छी चीजें हैं वहां. यूनिवर्सिटी है, बड़ा हॉस्पिटल है राजेंद्रा हॉस्पिटल, और वहां स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी पहले, अब तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया. तो ऐसे ऐसे उसने बताया कि बड़े रिजोर्ट्स भी हैं वहां रास्ते में. तो अब जो बारात आनी थी, तो उनको उनके फादर ने बीइंग फौजी मिनट मिनट प्रोग्राम भेजा, इतने बजे वहां से बारात चलनी चाहिए, इतने बजे यहां पहुंचनी चाहिए, आधे घंटे बाद यहां पहुंचेंगे, 5-7 मिनट का वो बीच में मार्जिन लेकर यहां आपको बढ़िया कॉफी और पनीर के पकोड़े खिलाए जाएंगे, फिर आप आगे आएंगे 1.25 घंटे के बीच में सिर्फ. तो आगे बिल्कुल शादी के मंडप पर पहुंचने से पहले, जयमाला से पहले, गर्मियों का मौसम था, बहुत बढ़िया मैंगो शेक पिलाया जाएगा, फ्लेवर्ड बढ़िया मैंगो शेक। तो फिर उसके बाद आप फला रिजोर्ट में वहां आएंगे और वहां ये शादी की रीति रस्म होगी। तो बारात जो इधर परिवार है वो सारा एजुकेशन को समर्पित, मतलब प्रोफेसर, बड़े प्रिंसिपल और एक बड़ी वहां टीम्ड यूनिवर्सिटी है, चितकारा यूनिवर्सिटी, उसमें वो उनके पार्टनर और बड़े प्रोफेसर थे, लाइक वाइस प्रिंसिपल इस तरह से। तो वो भी उनका सास ससुर पति ये सब एजुकेशन को समर्पित। तो इन्होंने बिल्कुल सेम वैसे ही किया, बिल्कुल टाइम पर टिच बारात चली वहां पर, और जैसे जैसे कहा और फिर वो वैसे वैसे वहां पहुंचते गए, जहां उनका रिसेप्शन होना था, जहां कॉफी और पनीर के पकोड़े मिलने थे, और ऐसे ऐसे आगे चले गए वो। मजेदार चीज क्या हुई कि जिस रिजॉर्ट में, जिस पैलेस में उनको बढ़िया मैंगो शेक मिलना था, टोकरियों में बड़े बड़े आम सजे हुए, व्हाइट व्हाइट ड्रेस में केटरिंग वाले वो खड़े, मशीनें तैयार, लेकिन लाइट चली गई। अच्छा, जो वहां का वो था जनरेटर, उससे वो तो चल सकते हैं, पंखे चल सकते हैं, एक आध वो डक्ट था वहां कूलर जैसे, वो चल सकता है, लेकिन वो जो मशीनें थी वो थोड़ी बड़ी थी, ऐसे नॉर्मल मिक्सर नहीं थी, तो वो नहीं चली, वो उसे कनेक्ट नहीं थी, नहीं चली। कोई बड़ा हैवी जनरेटर होगा वो चलाया नहीं, या उसकी तैयारी नहीं थी, लाइट अक्सर वहां जाती नहीं थी। अब ये इतना बड़ा क्योस हो गया, क्योंकि लोगों को इन्हीं बातों की टेंशन हो जाती है, फिर भी उसने, ब्रिगेडियर साहब ने काफी संभाला, बाजार से बढ़िया बढ़िया जूसेस मंगवा लिए और कई कुछ किया, बट वो मैंगोज वैसे ही पड़े रहे, कैटरिंग वाले खड़े रहे और वो लाइट आई नहीं, मशीनें चली नहीं। अब पुराना जमाना तो था नहीं कि कद्दूकस करने लग जाए उसको, तो ऐसे ऐसे हुआ। अब वो बात तो हो गई, चलो बात खत्म हो गई, कई क्वेश्चंस उठे, ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, जनरेटर चलाना चाहिए था, सोच के रखना चाहिए था कि लाइट जा सकती है, ऐसे ऐसे सबने जितने मुंह उतनी बातें। बरातियों का काम क्या होता है, वो इसीलिए जाते हैं वहां, वह बाकी तो सब कुछ बना रहे होते हैं, कोई शादी के जोड़े, कोई गहने, कोई चीजें, कोई मंडप, ये बातें बनाने के लिए जाते हैं, बाराती माना बातें बनाने वाले। तो वो सब ने खूब बातें बनाई और वो फिर बात खत्म हो गई, चले गए, शादी हो गई। शादी हो गई, साल दो साल बीत गए, घर में बच्चा भी आ गया। अब वो माँ कहती, जो मेरे सामने बैठी थी, कहती मेरी शादी को 19 साल हो गए, 20वां साल चल रहा है, इस बीच मैं जब भी, मेरे एक बच्चा है और उस बच्चे को मैं कुछ भी समझाने लगती हूँ ना कि बेटा आपका होमवर्क नहीं हुआ स्कूल नर्सरी लेवल से, तो तब भी जब से कुछ समझाने लगती हूँ कि बेटा जाना चाहिए स्कूल में से, किसी बच्चे की नोटबुक लेकर आओ, आपको ऐसे करना चाहिए, अच्छा नोटबुक ले आया तो यू शुड रिटर्न द नोटबुक, यू शुड बी कमिटेड, ऐसे ऐसे मैं अपने बच्चे को कुछ भी समझाती हूँ, मेरी सास बीच में बोल पड़ती है, रहने दे इसको समझाने को, इसको कहती है यू शुड बी कमिटेड, देखे थे तुम्हारे पापा के कमिटमेंट मैंने, वो मैंगो शेक तो पिला नहीं सके। एक दिन में एक बार मैंगो शेक जरूर याद कर लेती थी वो, कई बार दो तीन बार, जब भी मैं किसी को कुछ समझाने लगती हूँ, कहने लगती हूँ, अपने फादर को, अपने ससुर को, अपने हस्बैंड को, किसी से कोई भी बात करूं और कोई ऐसी बात हो जो मेरी सास के कान में पड़ जाए, तो वही कहने लग जाती है ये प्रॉमिस कीप करना, ये वो, रहने दो, देखा था तेरे पापा ने प्रॉमिस कीप किया था, क्या वर्ड रखे थे उसने, देखा था कितना कमिटेड है, कितना ये है। जो बराती गए थे उन्होंने अपने घरों में 200 बार मैंगो शेक पी लिया होगा, लेकिन वो वाला मैंगो शेक आज तक नहीं पिया, और वो अब तक याद करवा रही है वो उसको, कहते दीदी फिर आप हमें सिखाते हो, पैकअप कर लो। मैं क्या पैकअप करूं, मेरी सास से तो एक मैंगो शेक पैकअप नहीं हुआ आज तक। अब आप सोचिए कि कितना मुश्किल है, पुरानी बातों से कितना जुड़े रहते हैं। अब ईमानदारी से अपने आप को चेक कीजिए, जहां जहां आप परिवार में रहते हैं, क्या आज तक बातों को छोड़ने की हिम्मत आई है? नहीं आई ना, कई छोड़ भी दी हैं जो अपने को दुख देती हैं, ऐसी कुछ बातें जिनको आप नहीं चाहते रिपीट हो, मेरा हस्बैंड, मेरी सास, मेरा ये वो युगल ये रिपीट ना करे, उसको तो आप छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अपने पर जब आती है और जब कहीं कोई बात वहां दुखती रग पर कोई हाथ लगाता है, फिर उगल देते हैं, 20 साल पहले से मैं जानती हूं आपको, वो शादी में फलां फलां दिन ऐसे हुआ था, फलां किसी के घर गए थे वहां ऐसे हुआ था। इसीलिए इस भट्टी को परिवर्तनकारी भट्टी समझना है। ये बात 100% चेंज करने की पूरी कोशिश करनी है, 100% चेंज करने की 100% कोशिश करनी है कि पुरानी वो बातें जो अपसेट करती हैं, कोई भी शुरू करे उस बात को बदलना आना चाहिए। और मैंने तो शुरू करनी ही नहीं है, मैंने तो कभी कहना ही नहीं है, भाई भी बहने भी इस बात को लिख के प्रतिज्ञा करके या छोड़ के जाना है। छोटा सा संगम युग रह गया है। अगर अभी तक हम इतना पुराना कूड़ा कचरा लेकर घूम रहे हैं तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? छोड़ देना चाहिए, पैकअप करना चाहिए, हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, कैसे फरिश्ता बनेंगे? यहाँ आते हैं मस्ती में नाचते हैं, जब मुरली के बाद दादी नचाते हैं, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मैं क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, माताएं डांस करती हैं, नाचती हैं, खुश होती हैं, और फिर जब बाहर निकलती हैं तो देखती हो चप्पल गायब, 2000 वाली, ठीक कहा था मेरी बेटी ने, 100 रुपए वाली पहन जाओ, क्यों मैं ये पहन के आई, वो सारी उससे जुड़ी हुई सारी बातें, वो चाहत का सिला, खुशी, तालियां, सब खत्म। इतनी टेम्परेरी खुशी, क्या हो गया? दीवानों को क्या पता चलता है, गुम हो गई तो हो गई, और वो भी दीवानी थी जो आपकी पहन गई उसने सोचा भगवान ने बढ़िया चप्पल दी मुझे तो वो भी पहन के चली गई। और उसके बाद आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हर क्लास में बैठते हैं, पहले उठ जाते हैं, क्लास के बीच में से उठते हैं, सारे चक्कर लगाते हैं, अरे वो समझदार है जिसने महंगी चप्पलें उठाई, वो क्यों क्लास में पहन के आएगी? अब आपकी तो क्लास में से उठी है तो वो क्यों पहन के आएगी अब दोबारा? वो उसने जाके अटैची में रख ली पैक करके उसे प्राप्ति हुई है ना भगवान के घर, और आपके थॉट वेस्ट हो रहे हैं। इसीलिए कोशिश करें कि कुछ भी दुनिया में सिचुएशंस में ऐसे काम हो ही ना जिसमें थॉट वेस्ट हो, पता लगे सचमुच में जहाँ भीड़ है, जहाँ ऐसी जगह है, वहाँ कैसे कपड़े, कैसी चप्पल पहन के आनी चाहिए, किस तरह का ड्रेसअप होना चाहिए जो मुझे देख के दूसरों के थॉट नहीं चले। लोग मंदिर में भी कह देते हैं, देखो मंदिर में, कीर्तन में, तीर्थ में आई और ड्रेस देखो जरा इसकी, कि जैसे पार्टी में जा रही हो। तो सोचो कि हम तो वो पक्के बीके हैं जिनको संकल्पों की बचत का मालूम है, तो उनके तो ना खुद के संकल्प वेस्ट होने चाहिए ना दूसरों के वेस्ट होने चाहिए। इसीलिए चार्ट चेकिंग तब कामयाब है जब हम पहले पुराना कचरा, पुरानी बातें छोड़ना शुरू कर देंगे। ये कर्म सिद्धांत है, छोटी छोटी बातें भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मैंने इनको एक थप्पड़ मारा, उसके बाद मैंने 11,000 लोगों को सुख दिया, प्रेरणाएं दी, खुशियां दी, तन से, मन से, धन से बहुत सुख दिया। उन 11,000 लोगों से मुझे सुख मिलेगा, इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, बहुत प्रशंसा मिलेगी, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन वो एक थप्पड़ वहीं खड़ा रहेगा। उस 11,000 लोगों को सुख देने से वो थप्पड़ खत्म नहीं होने वाला है। ये इतना बढ़िया हिसाब किताब है, क्योंकि ये अलग आत्मा को दिया है, वो अलग आत्माओं को दिया है, सुख अलग आत्माओं को दिया है, ये इनको दिया है, इसीलिए ये मुझे मिलेगा ही वापस। कभी भीड़ में, कभी ट्रेन में चलते हुए, कभी किसी मेले में, कभी कहीं, चाहे गलती से, चाहे उनसे गलती से लग गया, चाहे अगला जन्म चला गया, अगली यात्रा शुरू हो गई, वो शरीर छोड़ गए या मैं शरीर छोड़ गई, वो वापस जरूर आएगा वो थप्पड़। हो सकता है कि इतने लोगों को सुख दिया हो तो मन की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि अब जब थप्पड़ पड़ेगा मुझे खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने लोगों को सुख शक्तियां प्रेम प्रेरणाएं देते देते इतनी अच्छी स्टेज हो गई कि कोई बात नहीं, कर्जा उतर गया, हिसाब किताब है, या मैं इतनी प्रसिद्ध हो गई कि अब वो थप्पड़ मारेगा तो लोग उसी को बोलेंगे कि ये क्या किया, इतनी बड़ी साध्वी को तुमने थप्पड़ मार दिया, लेकिन मुझे तो पता है कि मैंने मारा था, वापस आया है। तो इसीलिए एक कर्म से दूसरा कर्म नहीं कटता है। इसीलिए चेकिंग का क्या मतलब है कि अब हो नहीं, जो हो चुके सो हो चुके। किसी का एक गुना मिला, किसी का 100 गुना मिला। जो ब्राह्मण बनने के बाद गलत दृष्टि भी रखी, दैहिक दृष्टि से भी देखा, उसका भी विकर्म बना है। तो जो हो चुका वो तो हो चुका। आज से, अभी से जो मुझे अकल आई, समझ आई, और जब जब ये समझ आई तब से कर्मों पर फुल अटेंशन। जो मैं कर रही हूँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सोचो आपके बच्चे देख रहे हैं, वो जो आप सोच रहे हो उसकी फिल्म बन रही है और आपके बच्चे देख रहे हैं, बच्चे जो कर रहे हैं वो उसके पेरेंट्स देख रहे हैं। शर्म आने लग जाएगी कि क्या क्या सोचते रहते हैं अभी भी। तो इसीलिए अब अच्छी तरह चेकिंग करनी है, सोचना, बैठना, लिखना, अटेंशन देना, और बार बार अपना चेहरा देखना। बाबा को क्यों गीत गाना पड़ता है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो इसीलिए अब मुझे दूसरा कोई क्यों याद कराए कि ये विकर्म है, ये सोचना नहीं चाहिए, ऐसे करना नहीं चाहिए। अब मुझे खुद को खुद ही देखना है। दूसरा कोई याद कराएगा आपको बुरा लगेगा, फिर आप उसको कुछ कह देंगे, फिर और बात का परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए 5 बातें जो पुरुषार्थ की चेकिंग भी है और अपने कर्मों पर अटेंशन देने का तरीका। क्यों बाबा को बार बार एक ही बात कहनी पड़ती है, 8 घंटे योग करो। 8 घंटा योग करने का मतलब 24 घंटा अटेंशन है ना। 24 घंटे अटेंशन रखेंगे तो जब योग में होंगे तो गुस्सा आएगा ही नहीं, ऐसे ही होता है ना। योग में गाली देने को दिल करेगा, गुस्सा करने को, गलत शब्द बोलने को दिल ही नहीं करेगा। तो योग में है तो विकर्म होंगे ही नहीं, योग युक्त है तो पिछले विकर्म विनाश होंगे, हल्कापन आएगा, विवेक जागृत होगा, हल्की सी भी गलती होने लगेगी तो पता लगेगा कि ये गलत हो रहा है, इसके सामने बैठा हूँ, ये मुझे पर चिंतन सुनाए जा रहा है, ऐसी बातें कर रहा है और ये मेरे ऊपर थोप रहा है और ये मेरा विकर्म बन रहा है। मुजफ्फरपुर के रानी दीदी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था हम बहनों की भट्टी में। उन्होंने कहा कि देखो, आपने कहते गांवों में देखा होगा कि जो घरों के बाहर बाउंड्री वॉल होती है ना, तो वो बाउंड्री वॉल होती है मिट्टी की, लिपाई की हुई, और उस पर वो क्या करते हैं, गोबर की, हाँ, उपले, पाथियां, थेपड़ी, कई नए शब्द होते हैं, तरह तरह के बोलते हैं सब, तो वो गोबर के उपले उस पर चिपका देते हैं, वो उस पर सूखते रहते हैं, फिर वो ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। तो कभी आपने देखा कि बढ़िया चमकीली चिकनी टाइल्स की दीवार हो और उस पर गोबर लिपा हो, गोबर के उपले लगाए हो किसी ने? कौन सी दीवार पे लगाते हैं? मिट्टी की खुरदरी दीवार पर, खुरदरी उबड़ खाबड़ मिट्टी की दीवार पर ही वो गोबर के उपले चिपकेंगे, है ना। तो जब अपने दिल की दीवार एकदम चिकनी चमकीली बढ़िया होगी तो कोई उस पे गोबर लगाने आएगा, पहली बात तो उसका दिल ही नहीं करेगा। कभी भी आप देखो बड़ी साफ सुथरी सुंदर जगह, 5-स्टार होटल में पान की पीक थूकने को दिल करता है क्या? कहाँ थूकते हैं? जहाँ ऑलरेडी गंदा है, कूड़ा है, गंदा है, कोई कोने खराब है, वहीं पर लोग थूकते रहते हैं। बिल्कुल साफ सुंदर जगह पर थोड़ी कोई थूक सकता है। तो ऑलरेडी जो खुरदरी उबड़ खाबड़ गंदी दीवार है उसी पर चिपकाएंगे। तो मैं जब बहुत चमकीली चिकनी टाइल्स, शीशा, ऐसी चिकनी बढ़िया चमकीली दीवार जैसा दिल है मेरा, तो उस पर अपना कोई गोबर लाके कैसे लगा देगा, है ना, और कोई लगाने भी आए तो बड़े प्यार से कह दो स्टॉप, कोई और जगह चले जाओ, आप और जगह ढूंढ लो, जरा अभी ये जगह अलाउड नहीं है इसके लिए। और जो दिख रही है कि ये इसी पर्पज के लिए बनी है, उसी जगह लोग जाते हैं, ये सुनता है बात और ऐसे ऐसे करता है, और फिर आगे दो क्वेश्चन भी पूछता, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर चार दिन बाद फिर पूछेगा, कोई बात बनी, ठीक हुई बात के वैसे ही चल रहा है, उनके घर में वैसे ही चल रहा है। जो इस तरह से पूछेगा उसके पास वो फिर और अगली बार और वो लेकर तसला भर के ले आएगा, अगले दिन फिर गोबर के उपले लगा देगा, क्योंकि उसको पता लगा ये प्रॉपर प्लेस है। तो इसीलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को चेक करना है कि मुझे कोई अपने पुरुषार्थहीनता के प्रोजेक्शन के लिए यूज ना करे। वो पुरुषार्थहीन है, बस मुरली सुन ली, 24 घंटे बाद दोबारा मुरली सुनने आ जाएगा, बात खत्म, बस इतना ही करना है, और बाबा का बन गया, मुसीबत पड़ने पर याद करेगा बाबा को, बस उसका इतना ही काम है। तो वो मुझे ना यूज करे अपने गंदगी फेंकने के लिए। तो इसीलिए कुछ सिर्फ 5 छोटी सिंपल बातें जो सभी कर सकते हैं उस पर अटेंशन देना है। और सच्चाई बताती हूँ कि कितने बाबा से मिलने आते हैं बाबा के बच्चे ना, 20-25 हजार जब सीजन होता है, कभी तो ज्यादा ज्यादा भी हुआ 27 हजार। अब सोचो कि 25 हजार का खाना बना और 1 हजार लोग और पहुंच जाए, 50-60-100 तो एडजस्ट हो जाते, 1000 मोर, और 1000 कितनी जगह घेरते हैं, आप सिर्फ 200-225 हैं, कितनी जगह घेरी हुई, और 1000 लोग होंगे तो कितनी जगह और चाहिए उस हॉल में बैठते हैं। अब ये वो 25000 लोग हैं, 26000 जो बाबा से मिलने आए खुशी में, प्यार में, बहुत अच्छे पुरुषार्थी भी हैं, उनमें से अगर ईमानदारी से चेक करें सभी में, सुबह की क्लास करने वाले 60% होंगे, उनमें भी सुबह की क्लास में आने वाले भी अमृत वेला उठने वाले 10-20% और कम हो जाएंगे, जो 5-5 उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, क्योंकि और तो कोई टाइम है नहीं मुरली सुनने का, सुबह ही सुन सकते हैं, फिर तो अपने कारोबार बिजनेस में बिजी हो जाएंगे, तो इसीलिए वो उठ के जल्दी तैयार होके 6-6 जो जहां टाइम है वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, फिर अमृत वेले तो उठ गए, 20% और कम हो गए उसमें से, अमृत वेले उठ गए, उनमें भी पावरफुल अमृत वेला करने वाले और कम हो जाएंगे, तो 25000 में से कितने रह जाएंगे, वो मुश्किल से 4-5 हजार जो पावरफुल अमृत वेला करते हैं और अटेंशन रखते हैं इस बात पर। तो इसीलिए मैं उन 4-5 हजार में हूं, और उनमें भी मुझे और आगे नंबर लेना है, तो इस भट्टी में ये अटेंशन रखना है, इसको फाइनल करना है, बिल्कुल फाइनल, कि अमृत वेला में उठना ही है। प्रथम प्रहर होता है 2-5 बजे, 3-3 घंटे के प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं, 2-5, फिर 5-8, फिर 8-11, ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई घड़ी के हिसाब से है, तो इस तरह 8 प्रहर होते हैं। तो प्रथम प्रहर अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त 2-5 बजे के बीच, 5 बजे के बाद किनका टाइम होता है सबको पता है ना, देखो भक्तों का, मांगने वालों का, तो ये जो पहले आ गई ये मांगेंगे नहीं, जो 2 बजे आके बैठ गए अपने माशूक के पास, ये मांगने वाले नहीं है, ये 3-4 बजे वाले ये वारिस हैं, अधिकार से लेने वाले हैं। तो इसीलिए पहला पॉइंट जो लिखना है, याद रखना है, अटेंशन रखना है, अमृत वेला कितने बजे उठे, अमृत वेला कितने बजे उठे, एक पार्ट है ये इस पहले पॉइंट का। दूसरा पार्ट है कितने बजे उठे, कैसा योग किया, ABC, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, और ये पता लगना चाहिए। बहुत मजा आया, अच्छा लगा, बाबा से बातें हुई, आंखों से आंसू बहे, चलो नहीं भी बहे आनंद आया, दिल नहीं किया, पता नहीं लगा समय का कैसे पूरा हो गया, बड़ा अच्छा सा उसकी गोदी में सिर रखा, उसकी किरणों में नहाए, तो ये जिसमें आनंद खुशी बहुत सन्नाटा शांति एकाग्र उत्तम स्थिति, समय का पता ही नहीं चला, मध्यम अच्छा लगा, बैठे और फ्रेश होके उठे ठीक था, कनिष्ठ बैठे रहे बातें करते रहे, कल ऑफिस में ऐसे हुआ था, बहुत बेइज्जती हुई थी बाबा, उसको ठीक करना, उसकी बुद्धि ठीक करना, घर में ऐसे हुआ तो जितने सास ससुर पड़ोसी, जिसके कुत्ते ने आपके बच्चे के पीछे पड़ गया था काटा था, उसकी बात उसका उसका सबका कुछ कुछ बोलते रहे और बातें करते रहे, नींद भी आती रही, चलो उठ गए, टाइम पूरा हो गया कनिष्ठ। तो पता लगता है, खुद को मालूम पड़ता है। तो कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की, उनको पता भी नहीं कि योग लग रहा है कि नहीं लग रहा, यहां भी होंगे, नए नए भी आए होंगे, तो वो यहां आके संगठन में योग करने का क्या फायदा होता है, मधुबन में भी आते हैं ना, तो संगठन में ही अमृत वेला योग करें। देखो कितनी सी देर, क्या वातावरण था, 20 मिनट सतीश गुप्ता जी ने योग कराया व्हाइट लाइट में, बहुत बहुत सन्नाटा, बहुत अच्छा वातावरण, पूरा टिक के एकदम यहां टिक के उन्होंने योग करवाया और वैसा ही सबको काम दिया। तो आप सोचिए कि जहां संगठन है वहां बहुत सारी जलती हुई लकड़ियों में एक गीली लकड़ी भी जल जाती है, और अलग से गीली लकड़ी को जलाओ तो वो जलेगी नहीं, धुआं ही देती रहेगी, वो अलग से बैठ गया। गार्डन में योग कर रहा हूं, आंखें बंद, परम धाम, जाया ही नहीं जा रहा, बहुत कोशिश की, ऊपर मुंह किया, नीचे किया, आंखें बंद की खोली, बहुत कोशिश की, छत तक भी नहीं पहुंचे, परम धाम जाना तो दूर की बात है। बाबा याद तो बहुत करता हूँ, तुझे प्यार तो बहुत करता हूँ, बड़ा कुछ किया, फिर उसके बाद सिर ला दिया, योग नहीं लगा। अकेली गीली लकड़ी योग करना आता नहीं है, बहुत कम प्रैक्टिस की है, तो फिर और यहाँ संगठन में बैठेंगे, एकदम भट्टी प्रज्वलित है उसमें उसका भी योग लग जाएगा, एकदम शांति के वाइब्रेशन अंदर जाएंगे, फिल करेंगे उसे, चार्जिंग शुरू हो जाएगी उसकी, है ना, तो उसका ये फायदा होता है। इसीलिए संगठन में योग करने का जब जब समय मिले अवश्य करना है, जब टाइम मिले, घरों में तो नहीं मिलता है, लेकिन घर में दो लोग ज्ञान में चलते हैं तो दोनों को इकट्ठे बैठकर योग करना है, खुली आंखों से दृष्टि देके, अगर घर में दो लोग ज्ञान में है तो युगल है, कोई बाप बेटा माँ बेटी जैसे भी है, तो ये कोशिश करें। अमृत वेला कितने बजे उठे वो बजे लिखना है, और कैसा योग किया, और ये चार्ट रात को ही चेक करें ऐसा जरूरी नहीं है, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, जैसे भाई साहब बता रहे थे ना, घंटे घंटे बाद चेक करता हूं मैं कि पिछले घंटे में योग लगा था या नहीं। सेकंड पॉइंट, मुरली क्लास, बड़ी सिंपल सी बात है, सभी सुनते पढ़ते होंगे, ये तो अच्छा समय है, जब हम ज्ञान में आए थे लंबी लंबी खद्दर जैसी मुरली होती थी, खद्दर के कागज पे साइक्लो स्टाइल होके आती थी, उसी मुरलियों के लिफाफों में डाल के धागे भी हमने बहुत लपेटे हुए हैं, यही कुंज भवन में मुरली का वो काम चलता था, तो ये वो मुरली अलग अलग डेट की अलग अलग सेंटर्स पर होती थी, ऐसा ही है ना, किसी भी सेंटर पर सेम डेट की मुरली नहीं चलती थी, जब जिसके पास पोस्ट पहुंचेगी, कोई महीना आगे चल रहा है कोई महीना पीछे चल रहा है ना, इस तरह से वो मुरलियां आती थी। फिर कैसे किसके दिमाग में आया, मीटिंग्स हुई, बड़ी बड़ों की मीटिंग्स, उसमें सिस्टम बना कि सेम डेट की मुरली उसी डेट को सब जगह सुनानी है, पहले ऐसा नहीं था, यह ऐसा करीबन 90 तक चलता रहा, इस तरह 90-92 तक भी ऐसा चलता रहा, 91 तक 92 तक भी, कि अलग अलग डेट्स के अलग अलग सेंटर्स पर मुरली होती थी, और अब कितना डिजिटल सिस्टम, हर एक के पास कल की मुरली आज ही आ गई मोबाइल पर, और कहते भी है हमारे पास मुरली पहुंच जाती है, ऑडियो मुरली, वीडियो मुरली, रिटर्न मुरली, इंग्लिश में मुरली, पढ़ते कब हैं बदायूं, वो देख के खुश हो जाते हैं कि डेट की पहले मुरली आ गई, उसको पढ़ नहीं रहे हैं। और कितनी जगह तो बहनें इतना भी पुरुषार्थ करती हैं कि सारी क्लास के लिए मुरली प्रिंट करा देती है, कई जगह मैंने देखा मुरली के बाद प्रिंटेड मुरली दे देती हैं उनको, भी पढ़ लेना, वैसी की वैसी कोरी की कोरी फाइल में जाके लगा देते हैं, जैसे सेंटर पे वो ना एक फाइल मैनेज हो रही है वैसे घर में भी एक फाइल बन रही है, क्या करेंगे उसका बाद में। वो देखो मुरली की हालत क्या करते हैं सतीश गुप्ता जी, मोड़ मोड़ के खोलते हैं, देखते हैं, मोड़ते हैं, डाल देते हैं, रात तक बेचारी मुरली के कागज की क्या हालत हो जाती होगी, पता तो लगता पढ़ाकू है। और जिसकी बढ़िया कोरी कोरी कॉपी नोटबुक रखी हो, बढ़िया जिल्द चढ़ा के कागज तक ना मुड़ा हो, वो पढ़ा ही नहीं। तो इसीलिए मुरली मॉर्निंग क्लास में ही सुननी है, फर्स्ट एंड बेस्ट ऑप्शन। मॉर्निंग में, मॉर्निंग क्लास में सेंटर पर जाकर ही मुरली सुननी है, ये तो है अच्छे पुरुषार्थी की निशानी। जागृत होकर इंतजार में जाऊं, मैं अपने प्रियतम की बातें सुनूं, मेरे लिए वो कुछ कह रहा है। एक योद्धा को सुबह सुबह सारे योद्धाओं को इकट्ठा करके उनका कमांडर उनको वे बताता है कि आज ये दुश्मन ऐसे ऐसे आएगा और इस तरह से आपने उसके किस किस अटैक का कैसे जवाब देना है, कहाँ मोर्चा संभालना है, कहाँ खड़े होना है, कैसे कैसे वार होगा, राइट। अब कमांडर ने सुबह सुबह सभी को डायरेक्शन दे दिया और सारे फौजी सारे सेनानी भेज दिए युद्ध के मैदान में। अच्छा, जो सेनानी आए शाम को दोपहर को, अब कहते हमें बता दो माया कैसे वार करेगी और कैसे करना, सारा दिन के मार खाए हुए, वार से हारे हुए मार खाए हुआ योद्धा थका टूटा शाम को आया, अब उसे क्या समझाएंगे और वो क्या करेगा, अब सारा दिन क्या करेगा, वो उसका तो दिन पूरा हो गया। तो सुबह जिनको बताया था वो कहीं कहीं बार बार जीते होंगे, कितनी बार उन्होंने जीत पाई होगी माया से, क्योंकि सुबह सुबह उनके कमांडर ने उनको सिखा दिया था। अब जो सुबह मुरली नहीं सुनते उनकी तो फिर यही हालत होती है। अच्छा, फिर क्या किया जाए, काम बहुत है। जैसे हमारे शहर में, उस शहर में जहां ड्यूटी मिली हुई है, वहां 7 बजे के रिकॉर्ड पर मुरली खत्म हो जाती है। 7 बजे का रिकॉर्ड बज के एक मधुबन से भाई आए, वो आगे सामने बैठे, उनको पता था भैया मुरली जल्दी खत्म होती है, तो जल्दी तैयार होके आ गए। तो मैंने कहा भी कल संडे है, कल आप अपना अनुभव और ये सब सुनाना, वर्किंग डे में तो मुश्किल होता है, बस इतना ही कहा। तो रिकॉर्ड बजा तो वो अभी देख रहे थे मेरी तरफ, तो सोच रहे थे कोई काम होगा, दीदी के पास आएंगे, लोग खड़े होंगे। उसने 2 मिनट बाद पीछे मुड़ के देखा, क्लास का हॉल खाली। ये क्या कि वर्किंग डेज में ऐसा ही होता है, वहां इसीलिए मुरली जल्दी पूरी करते हैं, उसके बाद बच्चों को भेजना करना सब कुछ होता है, अलग अलग शहर में अलग अलग समय है उनकी सुविधा के अनुसार। लेकिन फाइनल जो करना है वो ये कि नाश्ता तभी करना है जब मुरली पढ़ चुके या सुन चुके। अगर सुनने नहीं गए किन्हीं कारणों से, बच्चों को स्कूल इंस्टीट्यूट कहीं भेजना है, जल्दी ऑफिस जाना है, कुछ भी आपको काम है, आप शाम की क्लास में जाते हैं तो भी मुरली आपके पास है, आपने मुरली पढ़े बिना या सुने बिना ब्रेकफास्ट नहीं करना है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है दूध पीते हैं सिर्फ दूध का गिलास भी नहीं पीना, नाश्ता नहीं करना मुरली सुने बिना, होगा फाइनल, हाथ खड़ा करो जो कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं हाथ खड़े नहीं देख रही, जिन्होंने नहीं किया उनके देख रही हूँ, वो नहीं करेंगे ऐसा। चलो एक 3 मिनट के गीत में शायद ताकत आ जाए। अमृत वेला करते ही मुरली पढ़ लेना, जिनको सुबह की क्लास करना मुश्किल है, दूर है, कोई कारण है, तो उनको करना ये चाहिए कि अमृत वेला योग करने के बाद मुरली पढ़ने बैठ जाओ, है ना। ये कोई वो ऐसा विधि विधान नहीं है कि नहाए बिना मुरली पढ़ ली पाप लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पढ़ना जरूरी है, उसके बिना कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए वो पाप से बढ़कर हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्ती है, प्यार है भगवान से, तो कोई जैसे एक गीत है दुनिया में, आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। कई कहते हैं योग करना बड़ा अच्छा लगता है, बाबा कमरे में आते हैं, योग करते हैं, 10-15 मिनट बैठते हैं, चले जाते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं, तो वो वैसा उनके लिए वो गीत बना हुआ है कि प्यार तो तेरे से बहुत है, बट तू बोलना मत कुछ तेरा बोलना नहीं अच्छा लगता, ना मैं बोलू ना तू बोल, तो तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। वैसे प्यार बहुत है, इश्क बहुत है, मरते हैं हम तुझ पे तो ऐसा नहीं, मुरली नाश्ते से पहले ही पढ़नी है, ये फाइनल करना है, ये भट्टी में एक दिव्य परिवर्तन करके जाना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सेंटर पर आना तो एकदम डायमंड है, सेंटर पर आकर सुनना। तो अगर किसी कारण से नहीं आ सके तो वो पता लग जाता है, अच्छा बहाना होता है ना, ये कारण थे इसलिए नहीं आते, अच्छा संडे के दिन बना बच्चों को स्कूल भेजना है, ना खुद जल्दी जाना, कुछ नहीं, संडे के दिन भी नहीं आए सेंटर पर, इट मीन्स उनको आदत पड़ गई है लथार्जिक होने की, योग करो और सो जाओ, ऐसा नहीं। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट, मुरली से ही स्वमान निकालना और उसके पॉइंट्स याद रखना, चेक करना है मुरली से, मुरली का स्वमान वरदान या पॉइंट्स सारा दिन कितना याद रहे। जैसे आज की मुरली में से कितनी बार क्लास हो गई, रूहानी पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी की निशानियां, कितनी बातें बाबा ने उसमें कही, तो वो उसके अनुसार वो स्वमान निकालो, ताकि मुरली भी याद रहे और वो भी याद रहे। तो मुरली का स्वमान वरदान या पॉइंट्स कितना याद रहे, ये चेक करना है, रात को लिखना है। सारा दिन ब्लैंक रहा कोई शर्म की बात नहीं है, किसी को दिखाना थोड़ी है, लिख दो नहीं याद रहा, झूठ किसके आगे बोलना, वो जो सब कुछ जानता है, तो नहीं रहा तो लिख दो नहीं रहा, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी दोबारा, कोई बात नहीं, लिखेंगे तो अगले दिन कुछ करेंगे तो सही ना। चौथा पॉइंट, ये खास है, इसके लिए कुछ कुछ थोड़ा सा सिस्टम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे हमारी पूरी कोशिश होती है जब सब भोजन कर लें उसके बाद जाएं, या पहले चले जाएं, या कुछ इस तरह से कर लें कि भोजन करते समय मोबाइल पर बातें नहीं, टीवी नहीं, और वैसे भी बातें नहीं, भोजन करते समय मौन शांत, ताकि उस ब्रह्मा भोजन का रस बने और वो आपको अंदर से शक्ति दे। कर सकते हैं सभी ये, या सारी दुनिया की बातें भोजन करते समय करनी है ना, शिकायतें लगानी है बच्चों की, इसकी उसकी, भोजन के टाइम ही लगानी है, ना खुद शांति से रोटी खानी, ना दूसरे को खाने देना, ऐसा नहीं करना है। मोबाइल पर भी बातें नहीं करनी, सिर्फ 15 मिनट, बस 15 मिनट्स लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 15 मिनट्स योग में काउंट हो जाएंगे, गिनती हो जाएंगे। तो भोजन करते समय मौन, इस पर अटेंशन, आज 3 बार भोजन किया, भोजन करते समय मौन और बाबा की याद में रहे, ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, जो विकर्मों से बचाएगा ही, नुमा शाम का योग। अब कईयों का इसमें बहुत से क्वेश्चंस होंगे मन में कि क्या करें, हमारी ड्यूटी रात के 9 बजे तक है, किसी की 8 बजे तक, किसी का कुछ, वो अपनी सेटिंग खुद करें। ये भाग्य है जो अगर बैठकर योग कर सकते हैं, कम से कम आधा घंटा, 7 से 7:30 कम से कम, घर में रहते हुए सेंटर पर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो सेंटर पर गीता पाठशाला में नहीं जा सके, वो इस तरह का सिस्टम बना ले कि आपको कोई छेड़े ही ना 7 से 7:30, अपना कमरा बंद किया, बाबा के गीत बजाए, कमेंट्री बजाई और योग करना है। धीरे धीरे सबको खबर मिल जाएगी, सबको पता लग जाएगा कि ये आधा घंटा बात नहीं करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, मिलेंगे नहीं। नुमा शाम का कम से कम आधा घंटा योग, कितनों के लिए पॉसिबल है? ये माताओं के लिए, सबके लिए। बाबा कहते हैं माताएं खाली होती हैं, वेली, बस दो रोटी पकाई, काम खत्म। आजकल तो स्थूल काम भी बहुत नहीं है, काम वालियां रखनी जरूरी है आजकल तो, है ना। एक बहन थी, वो जब बारिश होती थी तो उसकी मेड सर्वेंट आती नहीं थी, तो वो दूर कहीं कॉलोनी थी, कच्ची सी कॉलोनी जहां से उस वो रहती थी, तो गाड़ी भी नहीं जाती, वो स्कूटर पर उसको लेने चल पड़ती थी। दो कमरे के फ्लैट में पोछा नहीं लगाती थी, झाड़ू पोछा करना मुश्किल है, और इतना चल के इतनी गंदगी में, कीचड़ में, बारिश में स्कूटर स्लिप होने का भी खतरा, वहां उसको लेने चली जाती थी, स्कूटर पर बिठा के लाती थी, और वो आती थी 5 मिनट में झाड़ू पोछा किया और खाली, बताओ। और उसने आधा घंटा लगाया, आधे घंटे से ज्यादा, गई लाई, तैयार भी होके गई, थोड़ा सा उतने में तो वो कर ही लेती इससे अच्छा तो। तो ऐसी ऐसी हालत हो गई है कि डिपेंडेंसी बहुत हो गई है, तो इसीलिए ऐसे कामों में भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो शाम का योग आवश्यक है, कुछ भी करके आपने समय निकालना ही है। भाई जो बिजनेस में है, नौकरी में है, नहीं पहुंच सके 7 बजे तक घर में या सेंटर पर, तो वो कुछ भी थोड़ा सा ओवर सेटिंग कर लें, 7:15 से 7:30 से 8 कर लें, आधा घंटा शाम को योग जरूर करना है। आप कोशिश करेंगे तो बाबा मदद करेगा, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो बाबा की तरफ से भी फिर क्लीन हो जाता है कि तुमने ही नहीं मेहनत करी तो मैं क्या करूं। तो इसीलिए ये वो बात है जो अपने आप को, ये ना अपने आप सेफ्टी वाली बातें अंदर आएंगी। शाम को योग करने लगेंगे ना, उससे पहले सारे दिन की एक बार 2 मिनट में दिनचर्या घूम जाएगी, कहां कहां टाइम वेस्ट किया, कहां कहां किसी को दुख दिया, ऐसी बात बोली जो उसका बीपी हाई कर दिया, तो ऐसे ना उससे दुआएं मिली, कुछ भी गलतियां होंगी, चार्ट की चेकिंग होगी, हाथ से नहीं लिखेंगे यहां शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये पापों से विकर्मों से बचाता है अमृत वेला योग, शाम का योग, और उसके बाद पुराने विकर्म विनाश भी करने हैं तो ज्यादा योग। अभी भी तो टाइम निकाल कर आए हैं, कुछ पीछे छूट थोड़ी गया, खराब थोड़ी हो जाएगा कुछ, है ना। तो वैसे इतना ज्यादा टाइम निकाल लिया तो रोज शाम को आधा घंटा भी निकाल ही सकते हैं, भाई सभी निकाल सकते हैं, जो रिटायर हो गए हैं वो निकाल सकते हैं, कि उनके लिए और ज्यादा मुश्किल काम है, पोते पोतियों को खिलाने ले जाना होता है शाम को ही। 100% कोशिश करनी है, मात्र 5 बातें रोज चेक करनी है। लिखी सभी ने, एक बार रिवाइज कर देती हूँ। अमृत वेला कितने बजे उठे और कैसा योग किया, ए बी सी। पीछे वाले सुन रहे हैं ध्यान से, हाथ ऊपर करें जरा, सुना ना सभी ने। सेकंड, मुरली क्लास, मॉर्निंग मुरली क्लास की या नाश्ते से पहले मुरली पढ़ी, इस पर टिक मार्क करना है, पढ़ी या नहीं पढ़ी, काम चलाऊ पढ़ी ये पढ़ी, वो तो आपके ऊपर है, है ना भाई। जैसे नियम ही बना लिया तो फटफट फटफट मुरली पढ़ो और जल्दी नाश्ता लगा दो, मेरा मुझे बहुत काम है। तो तीसरा, मुरली में से ही स्वमान निकालकर याद रखा, मुरली का स्वमान, वरदान, मुरली के पॉइंट्स, सारा दिन में कितने याद रहे, ये परसेंटेज में लिखें, आधा दिन लिखें, जितने रहे अपनी संतुष्टि के अनुसार लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट, भोजन करते समय मौन, दिन में 3 बार अटेंशन और योग लगेगा, फिर मौन और बाबा की याद में भोजन करना। और लास्ट पॉइंट है नुमा शाम का योग, और जरूरी काम है चार्ट लिखना, है ना भाई। जैसे होमवर्क देने के बाद वो मैडम लिख के भेजती थी टीचर के, ये जो जिस डायरी में होमवर्क लिखते थे प्लीज इसको जरूर पढ़ना, जो होमवर्क दिया वो होमवर्क क्या दिया वो भी पढ़ लेना। तो ये सभी ने करना है ताकि आपकी भट्टी सफल हो। आपका यहाँ आना, दीदियाँ आपको लेकर आई हैं, इतनी मेहनत करके, कितनी छटनी की है, कोशिश की, किसी ने 2 महीने पहले रिजर्वेशन करा रखी थी, आते आते कैंसिल हो गया और किसी का आते आते प्रोग्राम बन गया 2-4 दिन पहले, तो लक्की हुए ना। जो यहाँ आके बैठ गया वो लक्की है ही है। और कितनी मेहनत से बहने लेकर आती हैं, कितनी मुश्किल से पांडव भवन में भट्टी मिलती है, हम सब जानते हैं। इतनी सारी एप्लीकेशंस होती है मुन्नी दीदी के सामने, और उनमें से बारी बारी किसको कैसे सॉर्ट आउट करती हैं वो, मतलब अगर ये कम से कम कितनी होती है शंभु भाई एक सीजन में भट्टी है? नहीं वैसे लगभग कितनी, 30 हो जाती है, 21। तो लगभग देखो आप, उनके पास 150 एप्लीकेशंस जाती हैं, उसमें से 21 की सिलेक्शन होती है एक साल में, बाकी अगले साल के लिए पेंडिंग हो जाती है। और इस बार तो कितने पहले भी, कितने जून में, मई जून में तो मिला ही नहीं चांस, अप्रैल मई जून में, इस बार जुलाई में शुरू हुई है। तो आप बहुत बहुत लक्कीएस्ट हैं जो आप पहुंच गए भट्टी की, और इसके बाद फिर चांस मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन जो भट्टी से परिवर्तन हुआ ये अविनाशी होना चाहिए, ये बस फाइनल होना चाहिए। और कितना अच्छा लगे अगर आप अपनी लाइफ में ये बात कहो कि मैंने उस दिन के बाद कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, आपको खुद बोल के कितना अच्छा लगेगा। मुझे आत्मा ने भी जहां से मुझे परवरिश मिली, पालना मिली, हमें ये पता ही नहीं था कि अमृत वेला मिस करना और मुरली मिस करना होता क्या है। मॉर्निंग में मुरली ना सुनना ये क्या होता है, हमें तो मालूम ही नहीं था। मतलब अमृत वेला और मुरली मीन्स जैसे रोटी खाना जरूरी है वैसे कंपलसरी है ये। इसको मिस करना क्या होता है, इसका वो डेफिनेशन ही नहीं लाइफ में। चाहे ट्रेन में है, चाहे हॉस्पिटल में है, 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई, 11-12 बजे तक ड्रिप लगी रही और 3 बजे उठ के बाहर कुर्सी रख के बैठ गई मैं गैलरी में। वो नर्सिस दौड़ी आई, क्या हो गया क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, आप भी मेरे सामने बैठो, हम तीनों करेंगे। उनको भी कमेंट्री दे के अमृत वेले सेवा भी हो गई। 3 बजे से लेके 4 बजे तक वो योग करती रही, फिर उनकी ड्यूटी चेंज हुई। तो सोचो कि कितना अच्छा लगता है कि पिछले 35-36 वर्षों में कभी भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, पता ही नहीं अमृत, चाहे रात के 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, उठने का टाइम वही है, दिन में रेस्ट का टाइम मिल जाता है, अमृत वेला करके भी कभी नहीं सोए क्योंकि वहां होता ही नहीं, वहां टाइम नहीं है, क्लास जल्दी होती है वहां 5:15। अच्छा टीचर बनने का मतलब फैसिलिटी है, आपको जबरदस्ती संपूर्ण जल्दी बनना पड़ेगा, वहां 5:15 क्लास वाले आके सिर पर खड़े हो जाएंगे, कब सोओगे आप। तो इसीलिए सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो ये बहुत बहुत ही आपका अच्छा भाग्य है जो आप पहुंचे, अच्छे पुरुषार्थ के लिए आप वचनबद्ध हैं, और आपका जीवन बहुत अच्छे पुरुषार्थ और खुशियों से भरा हुआ हो, ऐसी हमारी दिल से शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। चलो अभी 2 मिनट योग करेंगे।